अब आगे, अरमान सिंघानिया की शक्ति का आधा हिस्सा उस जमीन से आता था, ये बात वो अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने एक अलग ही प्रकार की योजना बनानी शुरू कर दी थी। वहीं वीर रायचंद पूरी तरह से झुंझला उठा था। उसे ये पता चलने पर कि उसकी माँ अरमान सिंघानिया की भी माँ है, उसके तन बदन में आग लग गई थी। ऊपर से उसके पिता ने उसे चूहे की तरह बिल में रहने को कहा था, अबीर सिंह राठौर के अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ, क्योंकि अबीर ने उन शक्तिशाली लोगों की जान ले ली थी जो अरमान के लिए काम करते थे और जो अरमान को बेहद शक्तिशाली बनाते थे। अबीर ने उनकी जान लेने के बाद अपने आदमियों को उनकी जगह नियुक्त कर दिया था। इस वजह से अरमान को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अरमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ना तो वो पहले कभी डेविल किंग बनना चाहता था और ना ही अब उसे इसमें कोई रुचि थी। अगर उसे किसी में रुचि थी तो वो थी उसकी प्यारी खूबसूरत बीवी आस्था। अरमान ने आस्था को अपना जुनून बना लिया था। आस्था के बिना जीवन जीने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। वीर रायचंद पूरी तरह से झुंझला उठा था। वो अपने घर पर नहीं रह रहा था और सीधा सीधा उसे अबीर के पास रहना पड़ रहा था। अबीर के साथ रहना उसे जेल जैसा लग रहा था, क्योंकि अबीर की जिंदगी बिल्कुल बेरंग थी। उसमें किसी तरह का कोई रोमांस नहीं था। अबीर के घर में कोई महिला नौकरानी भी नहीं थी, जबकि वीर रायचंद को हर रोज अपने बिस्तर पर एक नई लड़की चाहिए होती थी। लेकिन यहाँ उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। पूरा एक हफ्ता उसने अबीर के साथ गुजारा था और वहाँ रुके रहना उसके लिए मुश्किल हो चुका था, इसलिए उसने अपने एक आदमी को फ़ोन करके कुछ स्क्वाट गर्ल्स को अबीर के फार्म हाउस पर बुला लिया था। अबीर उस वक्त वहाँ नहीं था, वो कुछ ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था। जैसे ही उसने दो तीन लड़कियों को बुलाया, वे आते ही अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सारे कपड़े उतारकर वीर को पूरी तरह से फुसलाना और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया। वीर को तो ऐसा ही माहौल चाहिए था। अबीर सिंह राठौर जैसे ही अपना काम पूरा करके आया और उसने अपने हॉल में इस तरह का नंगा नाच देखा तो उसके हाथों की मुट्ठी बंद हो गई, क्योंकि उस वक्त पूरा फार्म हाउस खाली था। अबीर सिंह राठौर जैसे ही वहां आया और उसने ये देखा तो उसकी नसें तन गईं। अबीर आगे बढ़कर वीर रायचंद को, जो एक लड़की के साथ पूरी तरह से अंतरंग हो रहा था, खींचकर लात मार दी। वो दूर जा गिरा। वो लड़कियां अपने उल्टे सीधे कपड़े पहनकर जल्दी से वहां से भाग गईं। वीर गुस्से से खड़ा होकर अबीर के कॉलर को पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की? मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूं, समझे तुम? वीर अबीर को घूरने लगा। तभी अबीर ने वीर के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, जब तक मेरी निगरानी में हो, मेरे नियमों के हिसाब से ही तुम्हें रहना होगा, अन्यथा मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, समझे तुम? अबीर ने वीर को धक्का दे दिया और अपने कमरे में चला गया। वीर अब पूरी तरह से गुस्से से बौखला उठा था। वीर की आज तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी जितनी आज हुई थी। वो बेइज्जती की आग में तप रहा था। वो समझ चुका था कि अगर अबीर राठौर ने उसे यहाँ अपने पास रखा है तो जरूर इसके पीछे उसका कुछ न कुछ मकसद है, वरना खाली खाली वो उसे यहाँ क्यों रखेगा। फिलहाल वीर का वहां रुके रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो बिना किसी को बताए सीधा अपने घर की ओर रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर, अरमान से ढेर सारा प्यार करने के बाद आस्था अब अरमान से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अरमान आस्था को बिल्कुल बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि मियां बीवी के बीच किसी तरह का कोई पर्दा नहीं है और वो उसे इतना प्यार करता है तो उसे इतना शर्माने की क्या जरूरत है। ये कहते हुए अरमान खुद ही ब्लश कर रहा था। आस्था ने शर्म के मारे अपने छोटे से सर को अरमान के चौड़े सीने में छुपा रखा था। तब अरमान ने आस्था की पीठ को सहलाते हुए उसे गोद में उठा लिया और सीधा बाथरूम में ले आया। दोनों कितनी देर तक एक दूसरे की बाहों में नहाते रहे। अरमान को आस्था के साथ रहकर एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता था। कितनी देर तक अरमान और आस्था एक दूसरे में डूबे रहे, उसके बाद दोनों ने साथ में कपड़े पहने और अरमान आस्था को साथ लेकर नीचे हॉल में आ गया। और जैसे ही वो हॉल में आया, अरमान के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, शायद आस्था के प्यार करने की, क्योंकि आस्था ने आज आगे बढ़कर अरमान को प्यार किया था तो अरमान को बहुत अच्छा लग रहा था। अरमान को हॉल में मुस्कुराते हुए देखकर सभी बहुत खुश हो रहे थे। सभी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अरमान खुश होता था तो माहौल अलग ही लेवल का हो जाता था। चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती थी। वहीं मारिया और टाइगर एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों भले ही एक दूसरे से शादी करने वाले थे और एक दूसरे के साथ वे अंतरंग भी कितनी बार हो चुके थे, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे को छेड़ना बंद नहीं किया था। इनफैक्ट अरमान उन दोनों को देख रहा था और साथ ही साथ अरमान ने सोच लिया था कि उन दोनों के लिए उसे क्या करना है। वहीं दूसरी ओर आकाश और सुमित उस वक्त हॉल में मौजूद थे। राधिका मायूसी एक तरफ अलग बैठी थी, क्योंकि सुमित ने जो उसके साथ बर्ताव किया था वो उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन फिलहाल वो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो खुद सुमित पर निर्भर थी और सुमित के बिना जीवन जीने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। वहीं रौनक नानी माँ के कंधे पर हाथ रखकर बैठी हुई थी, बिल्कुल लड़कों के स्टाइल में। वो नानी माँ की ओर देखकर बोली, नानी माँ एक बात बताइए, जब आप जवान थी क्या आपको कभी प्यार हुआ था? जैसे ही रौनक ने ये सवाल किया, नानी माँ तुरंत शर्मा गई, अपने साड़ी के पल्लू को अपने मुंह में लेकर बोली, अरे बिटिया, अब हमारे जमाने की हम आपको क्या बात बताएं, प्यार तो हमारे जमाने में होता था,
अब क्या कोई प्यार होता है? अब तो लड़का लड़की मिले, आपस में किस किया तो सोचते हैं कि प्यार हो गया। तुम्हें पता है हमारे जमाने में जब प्यार होता था ना, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी होती थी, कितने बड़े बड़े त्याग करने होते थे। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा मुश्किल काम होता था लड़की के माँ बाप को मनाना। और तुम जानती हो, आस्था के नाना जी ने पूरे 8 साल लगा दिए थे, तब जाकर मेरे माँ बाप शादी के लिए माने थे। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, सभी मुंह खोलकर हैरानी से नानी माँ की बातें सुनने लगे थे। आहान को तो नानी माँ की बातों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी आ रही थी। और अभी वे सब एक दूसरे से बात ही कर रहे थे, तभी अचानक सुमित के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। सुमित ने जैसे ही अपना फोन उठाकर देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। वहीं आहान, जो रौनक की तरह ही नानी माँ के दूसरे कंधे पर हाथ रखकर बैठ गया था, बोला, नानी माँ फिर क्या हुआ, बताइए ना, आगे बताइए ना, जब आपकी शादी हुई तब क्या हुआ। आहान को भी नानी माँ की बातों में दिलचस्पी आ रही थी, तो वो उससे आगे पूछना चाहता था कि नानी माँ की शादी के बाद आगे क्या हुआ। तब नानी माँ बोली, अरे तेरे बिटवा, उसके आगे की बात हम आपको क्या बताएं। तभी आहान के फोन पर भी वही नोटिफिकेशन आया जो सुमित के फोन पर आया था। और अभी थोड़ी देर पहले आहान, जो बच्चों जैसा मासूम और प्यारा लग रहा था, उसके एक्सप्रेशन बदल गए थे। वहीं रौनक घूरकर आहान को देख रही थी। एक तो आहान ने जिस तरह से हल्दी में बंदूक निकालकर अबीर के माथे से लगाई थी, उसके बाद आहान का बच्चों वाला व्यवहार, फिर आहान का एकदम से ही अडल्ट वाला व्यवहार, रौनक कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार मसला क्या है, क्या हुआ है कि इसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए हैं। कहीं ना कहीं रौनक ने फैसला लिया था कि वो आहान के बारे में सच जानकर रहेगी कि आखिरकार आहान की असली पहचान क्या है। तभी आहान ने सुमित की ओर देखा।
सुमित ने आकाश की ओर और साथ ही साथ सभी ने एक साथ फिर अरमान सिंघानिया की तरफ देखा। अरमान ने केवल अपनी पलकें 2 बार झपकाईं। अरमान का आदेश मिलते ही सारे के सारे खड़े हो गए और इस तरह से मेंशन से बाहर निकल गए। न जाने क्या हो गया होगा, और सब हैरानी से उन्हें जाते हुए देख रहे थे। अरमान, टाइगर, मारिया और अन्य लोग उनके साथ ही बाहर चले गए। तब अरमान ने आस्था को ढूंढा। आस्था, जो अरमान से ढेर सारा प्यार करने के बाद सीधा किचन में घुस गई थी, क्योंकि वो आज अपने हाथों से अरमान के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी। इसके लिए उसने मूंग की दाल का हलवा चुना था कि आज वो अपने हाथों से बनाकर मूंग की दाल का हलवा अरमान को खिलाएगी। जैसे ही आस्था ने सबको बाहर जाते हुए देखा, वो तुरंत अरमान के सामने जाकर खड़ी होकर पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने हमसे वादा किया था कि आज का सारा बचा हुआ दिन हमारे साथ गुजारेंगे, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। लगभग मैंने आपके लिए हलवा बना दिया है, वो पूरी तरह से तैयार है। प्लीज़ आप बस 10 मिनट वेट कीजिए, मैं लेकर आ रही हूँ। जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान ने आगे बढ़कर आस्था के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, आप हलवा बनाकर रेडी रखिए, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया है। अगर इम्पॉर्टेंट काम नहीं आता तो मैं नहीं जाता। जैसे ही अरमान ने इतने प्यार से कहा, आस्था अरमान को जाने से रोक ही नहीं पाई। हल्की सी मुस्कान के साथ आस्था बोली, ठीक है, लेकिन आप जल्दी आ जाइएगा, वैसे भी हमारा आपके बिना मन नहीं लगता है। आस्था अरमान के कोट के बटन से खेल रही थी। अरमान को उस वक्त वो बड़ी ही प्यारी और क्यूट लग रही थी। उसको खुद दिल नहीं कर रहा था कि वो आस्था को छोड़कर जाए, लेकिन फिलहाल उन लव बर्ड्स को एक साथ देखकर नानी माँ जोरों से खांसने लगीं। आस्था तुरंत अरमान से 2 कदम पीछे की दूरी बनाकर खड़ी हो गई। अरमान घूर कर नानी माँ को देखने लगा। कहीं ना कहीं अरमान को यही लगता था कि नानी माँ उसके और आस्था के बीच कबाब में हड्डी है, जब देखो बीच में घुसती ही रहती है। तभी आस्था ने अरमान को जाने की इजाज़त दे दी और अरमान फटाफट से वहां से निकल चुका था। लगातार अरमान की 8-10 गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर को जैसे ही इस बात का पता चला कि वो बेवकूफ वीर रायचंद उसके घर से बिना बताए निकल चुका है, तो उसके माथे पर बल पड़ गए और फटाफट से उसने अपनी गाड़ियों समेत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वीर रायचंद उस वक्त बहुत घबराया हुआ था। अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंचा था और वो बीच रास्ते में अपनी गाड़ी से ब्रेक लगाकर खड़ा हुआ था। एक जगह शराब की दुकान दिखाई दे रही थी, तो उसने फैसला किया कि वो पहले थोड़ी सी शराब लेगा, उसके बाद आगे जाएगा, क्योंकि उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा मानसिक दबाव में था और वो इतने ज़्यादा मानसिक दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए वीर रायचंद ने एक शराब की बोतल अपने हाथ में ले ली और गाड़ी से ब्रेक लगाकर पीने लगा। लेकिन उसने अभी 2-3 घूंट ही लिए थे कि तभी कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ उसके आसपास आकर रुकती हैं। अब वीर के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे, क्योंकि इन गाड़ियों में से अरमान सिंघानिया अपने पूरे काफिले के साथ उतर रहा था और दूसरी गाड़ी में से अबीर सिंह राठौर अपने पूरे गार्ड्स के साथ उतर रहा था। अब वीर उन लोगों के बीच में था। अरमान सिंघानिया सीधे तरफ से आ रहा था, उल्टी तरफ से अबीर सिंह राठौर आ रहा था और उनके बीच में था वीर रायचंद। अब वीर के माथे से पसीना निकलना शुरू हो चुका था। अबीर सिंह राठौर वीर को देखकर तेजी से बोला, अरे बेवकूफ, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, फटाफट से इस साइड आ, वरना अरमान सिंघानिया तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अरमान वीर को देखकर तिरछा मुस्कुरा रहा था। असल में जो ये नोटिफिकेशन सबको मिला था वो वीर रायचंद की लोकेशन थी, क्योंकि अरमान ने अमरेश को धमकी देने के बाद भी देव को वीर के पीछे लगा दिया था,
कि वो वीर के बारे में जानकारी निकाले कि आखिरकार वीर रायचंद कहाँ है। जैसे ही अबीर सिंह राठौर के फार्म हाउस से वीर रायचंद निकला, ठीक उसी वक्त देव ने सभी को सूचित कर दिया था और सभी वीर को पकड़ने के लिए वहां आ पहुंचे थे।